शांति। आप बाबा सदा साथ है हमारे, अब हमें और क्या चाहिए। ये सबके मन का उद्गार है ना, बाबा साथ है तो और कुछ चाहिए। और बाबा साथ है, कुछ भी और नहीं चाहिए, तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह हो गए। बेफिक्र बादशाह हो गए, बाबा साथ है, कुछ नहीं और चाहिए। तो ब्रह्मा बाप समान हम बेफिक्र बादशाह कैसे बने? ब्रह्मा बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे? शिव बाबा के आने से पहले बाबा को लौकिक दुनिया में कितने फिक्र होंगे, धंधे का फिक्र, बच्चों का, परिवार का, कितने फिक्र होते दुनिया में, चिंताओं का टोकरा लेके हर एक घूम रहा है, केवल बड़े ही नहीं छोटे भी। छोटे बच्चे से भी पूछो, एकदम चेहरा एकदम टेंस, वो टेंशन है, वो टेंशन है। छोटे बच्चों को भी टेंशन है, बड़ों को तो छोड़ो। तो हर एक चिंताओं का टोकरा लेके घूम रहा है, छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं है। परंतु कैसे, जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय हुआ कि अब ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, शिव बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, तो सारे फिक्र बाबा को दे दिए शिव बाबा को, और बेफिक्र बादशाह बन गया। तो हम भी कैसे बेफिक्र बादशाह बने ब्रह्मा बाप के समान? कारोबार कोई छोटा नहीं था, कार्य छोटा नहीं था यज्ञ की स्थापना का। कितने बच्चों की जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे बेफिक्र। बाबा कहते थे मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये शिव बाबा का कार्य है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, मैं करूं तो मैं चिंता करूं, है पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, ये तो मेरा कार्य ही नहीं, बाबा का कार्य है, मैं तो केवल निमित्त हूं। बस ये निमित्त बना ही बेफिक्र बादशाह बना देता है। हालांकि यज्ञ में कितनी कठिनाइयां आई, कितने विघ्न आए, कितनी समस्याएं आई, बेगरी पाठ चला, कितने बच्चों ने बाबा का हाथ भी छोड़ दिया, कितनों को माया खा गई, लेकिन फिर भी बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। लोगों ने कितनी ग्लानि की बाबा की, तो भी बाबा बेफिक्र बादशाह रहे। शिव बाबा की प्रवेशता से पहले बाबा को कितना मान मिलता था, कितना उनका सम्मान था समाज में। लखीराज बाबू के नाम से बाबा को सब पुकारते थे, जहां बाबा जाते थे वहां लोग खड़े हो जाते थे, सलूट करते थे, इतना मान सम्मान था। परंतु जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, अनेकों को बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, थी तो सारी शिव बाबा की करामात, लेकिन लोगों ने उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि दादा लेखराज में कोई जादू है, ये तो जादूगर है, जादू करके सबको खींचता है अपनी तरफ, या कृष्ण का दर्शन इनसे होता है, कोई जादू है, इनके प्रसाद में जादू है, इनको ये है वो है, पता नहीं जो आया बोलते गए। तो बाबा को लगा ये कहां शिव बाबा, जब तक नहीं था तो बाबा का कितना मान शान था, कितना ठाट था, अंग्रेजों के साथ राजाओं के साथ उठना बैठना था बाबा का। उस समय तो वही राज्य करते थे अंग्रेज, और राजाएं महाराजाएं भी बहुत थे भारत में, तो राजा महाराजा भी बाबा का सम्मान करते थे। और यहाँ जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, मान सम्मान तो दूर, और ही झूठे झूठे आरोप भी लगने लगे, कलंक लगने लगे, क्योंकि जो बाबा के बच्चे आते थे, बहने आती थी, कृष्ण का दर्शन हो जाता था उनको बाबा से, तो एकदम बाबा को चिपक पड़ती थी, वो तो कृष्ण को देखती थी, बाबा को थोड़ी देखती थी। तो पुरुष लोग तो देख करके ये चमक जाते थे, ये क्या मेरी पत्नी किसको हाथ लगा रही है ऐसे भी होगा ना, ये किसको ऐसे चिपक गए, वो थोड़ी बाबा को देखते थे, वो तो कृष्ण देखती थी। फिर भाग करके आई, साक्षात्कार हुए, ऐसे अनुभव हुआ कि बस विनाश हुआ कि हुआ, सब घर बार छोड़ करके आ गए, सबको छोड़कर। अब बाबा तो पनाह देंगे, निकाल कैसे देंगे, तो बाबा पर कितना कलंक लगा, ये भगाता है। और ये सब ये इनकी रानियां हैं, अपने आप को कृष्ण कहलाता है। अब इनको 3,300 रानियां मिली है उस समय जो थोड़ी समर्पित हुई, इनको तो 16,108 रानियां चाहिए। कलंक लग गए, कलंक एक के बाद एक कलंक लगते गए। तो कई बार बाबा के मुरली में आता है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे, बाबा ये क्या क्या मेरा मान सम्मान था, ये तो क्या ग्लानी करने लगे हैं लोग। तो बाबा आपके आने के बाद ये सब मेरी ग्लानी करने लगे, तो बाबा आपके कारण है ये, मैं थोड़ी कुछ करता हूँ, मेरे पास कौन सी शक्ति है, ये तो शिव बाबा की शक्ति थी। तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा उलहना देते थे हंसी हंसी में, तो बाबा कहते थे कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में तुमने भी मेरी बहुत ग्लानी की है ना मुरली में बाबा कहते ना, कुत्ते बिले में सर्वव्यापी कह करके भीतर ठिकर पता नहीं क्या क्या कण कण में ऐसे कह दिया, यानी ग्लानी की है। तो बच्चे तुमने ग्लानी की, अभी थोड़ी सुन लो ग्लानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार बाबा की मुरली में आता है, वाट वेंदे बाम्भण फाथो, एक सिंधी में कहावत है, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। वैसे भी लौकिक में भी बाबा ब्राह्मण थे, कृपलानी जाति बहुत सिंधियों में सबसे ऊंची जाति होती है, ब्राह्मण वो कहलाते हैं वो। तो रास्ते चलते चलते बेचारा ब्राह्मण फंस गया, कहां वो अपने धंधे में कितना कितना मौज से चल रहा था, कोई कमी नहीं थी, और जैसे शिव बाबा आया तो ग्लानी शुरू हो गई। बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन सब बहनों के आगे समर्पित कर दिया। शिव बाबा ने जो आदेश दिया ब्रह्मा बाबा सब एक 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 सब पालन करता गया। शिव बाबा ने ऑर्डर दिया कि सब अभी प्रतिज्ञा करो कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। सब ने प्रतिज्ञा की, छोटे बड़ों ने, कुमारियों ने, बच्चों ने, माताओं ने, सब ने प्रतिज्ञा कर ली हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। शिव बाबा की शक्ति काम कर रही थी उस समय। तो जब लोगों को पता चला, अरे इसने तो जो भी इनके पास सत्संग जाते हैं सबसे प्रतिज्ञा करा ली अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, इसे कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, सब ऐसे पवित्र योगी बन जाएंगे। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी प्रतिज्ञा करा ली। ये तो बूढ़ा हो गया है, 60 साल से ऊपर हो गया, इसने कर ली क्या बड़ी बात है। पर ये बच्चों से क्यों कराई, छोटों से क्यों कराई? इन्होंने दुनिया ही कहाँ देखी है। दुनिया देखे फिर आप जाके बड़े होके उनके ऊपर है जो करना चाहे, पर इनसे क्यों कराई? तो बाबा कहते थे भाई मैंने तो नहीं कराई, उसने मेरे को भी कराई, उसने मुझे भी प्रतिज्ञा करवाई और मैंने उनके आगे प्रतिज्ञा की। तो जो मेरे से करवाई उसने सबसे करवाई, मैंने थोड़ी कराई, उसने कराई और मैंने की, और वो उसकी शक्ति ने काम किया। वो उसको तो जानते नहीं, वो किसको जानते हैं? वो तो बाबा ब्रह्मा बाबा को ही देखते थे। आप लोगों को मालूम है ना 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, बहुत जबरदस्त चाइना ने आक्रमण किया इंडिया पर, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ वो, ये जो ऊपर नॉर्थ बॉर्डर पर, हाँ सियाचिन ये कुछ, हाँ कितने भारत के लोग मारे गए, बहुत हमारे जवान मारे गए, तो भी वो हिस्सा तो छीन लिया, ले लिया, अभी तक उसका विवाद चल ही रहा है। तो उस समय शिव बाबा ने मुरली में कह दिया, बच्चे ये क्यों इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? अच्छा ले लिया कोई बात नहीं, बच्चे एक दिन सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा, अभी क्यों ये टुकड़े के लिए पीछे पड़ रहे हैं? सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा, धरती आकाश सब तुम्हारा हो जाएगा, अभी लिया तो लेने दो। ये बाबा ने ऐसे मुरली में कह दिया। अब ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पास मुरली चली गई, और गवर्नमेंट ऑफिसर के पास गई तो वो नेहरू जी के पास पहुंच गई। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी उस समय उनके ऐसा कुछ था, तो उसको कहा कि आप ये इंक्वायरी करो, या इंदिरा गांधी मतलब कुछ था उस समय, तो इंक्वायरी की, बहुत बड़ी इंक्वायरी थी, पुलिस ऑफिस बड़े ऑफिसर्स आए यहाँ पूछने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा बैठे थे, जी बच्चे आओ, माउंट आबू आ गए, इंक्वायरी गवर्नमेंट की तरफ से हुई, कहीं ये चाइना के जासूस तो नहीं है? ऐसे कह दिया कि कोई लिया तो कोई बात नहीं, बस आगे का नहीं पढ़ा कि एक दिन सारा विश्व आपके हाथ में आ जाएगा, ये सब नहीं, खाली वो जो लाइन थी ना, हाँ लिया तो कोई बात नहीं। वो बाबा तो बेहद के बाप थे ना, वो तो बाबा तो बेहद देखते थे। तो बाबा ये आपने बोला है? तो कहा ये देखो वो ऊपर वाला आता है ना, वो बोल के गया, ऊपर वाला वो आता है, मैंने तो नहीं बोला, ये ऊपर वाले ने बोला है। तो वो कहाँ है ऊपर वाला? कहा वो तो आके चला गया बोल करके, वो चला गया। पर बाबा को जब देखा, उनकी पर्सनालिटी, उनका उनकी पवित्रता, उनकी इतनी ऊंची स्थिति, अब वो ज्यादा तो बोल नहीं सके कुछ, बाबा के आगे कैसे बोलेंगे, इतनी बड़ी अथॉरिटी, बाबा के वाइब्रेशन से इतने ऊंचे थे जो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कुछ ज्यादा शब्द भी बोले बाबा के सामने। तो फिर आखिर कहते अच्छा अच्छा दादाजी अगली बार आवे तो उनको मना करना, कहना ऐसे नहीं बोले। ठीक है नहीं बोलेंगे। तो देखो, तो परंतु ब्रह्मा बाबा बेफिक्र भाषा, क्योंकि जब वो आए ना तो दूसरों को चिंता हो गई, आए ये ऑफिसर लोग आए हैं इंक्वायरी करने आए हैं, बाबा कहते बाबा से मिलना है, नहीं 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 इनको बाबा से नहीं मिलाना है, बाबा से नहीं मिलाएंगे। तो कहे मिलना है, उसके बिना जाएंगे नहीं। तो बेचारे डर डर करके बाबा के पास गए, बाबा ऐसे ऐसे आए हैं, वो कहते हैं आपसे मिलना है, और बाबा ये वो बातें कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे आने दो, कोई बात नहीं बच्चे आने दो। तो बाबा के आगे बाबा बाबा हाँ जैसे नहीं डर डर करके ये सब बातें कही, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बच्चे अगली बार आए तो उनको कहना ऐसे नहीं कही, और बात वही ऐसी पूरी हो गई जो बात ही नहीं। और जाकर के बड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट दिया कि ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं और इनका ये कोई मतलब नहीं था, वो ऑफिसरों ने उसको ठीक करके पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी, बात खत्म हो गई। क्योंकि बाबा से उनको कितनी बात मिली, काम चाइना के काम जासूस होंगे या ये होंगे, हम तो भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाबा के सामने बहुत बातें आई, तभी बाबा की मुरली में कई बार आता है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कितना मीठा है, और जिस थैली में होता है ना, वो थैली को ही पता है कि ये गुड़ कितना मीठा है, क्योंकि पूरा टाइम वो थैली वो गुड़ का मिठास लेती रहती है। तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो कैसे बाबा के बच्चे हैं, कहाँ कोई डिससर्विस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कितनी बातें हैं। तो बाबा के पास रिपोर्ट आती थी, बहुत बातें आती थी। एक बार अभी बीच में मुरली में किस्सा आया कि बाबा ने कहा, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो वो भी एक प्रसंग था, कलकत्ता में आर्य समाजी लोग थे ना, वो बहुत विरुद्ध थे ब्रह्मा कुमारियों के, खंडन खंडन मुंडन ये उनका काम था। अभी तो ये सब बेचारे ठंडे हो गए, लेकिन उस समय ये बहुत इनका जोर था, तो ब्रह्मा कुमारियों के बिल्कुल विरुद्ध थे। तो एग्जीबिशन की थी हम लोगों ने कलकत्ता में, शीला बनाप थी तब। तो क्या हुआ, ये आर्य समाजी आ गए, तोड़ फोड़ किया, मतलब आग लगा ली, सब किया, बहुत कुछ किया और हंगामा खूब किया। तो मतलब जो भी बात हुई होगी, तो बाबा के पास ये बात पहुंची और उन्होंने सारा गलत गलत अखबारों में डाल दिया, बहुत कुछ हुआ। तो अखबार जो थी ना उस समय, कलकत्ता की अखबार थी विश्वामित्र, विश्वामित्र अखबार अभी भी होगी, कलकत्ता की अखबार है विश्वामित्र। तो ये हो सकता है दो अलग प्रसंग हो, लेकिन बात ये है कि पहले तो जब बाबा के पास ये न्यूज गई कि ऐसे ऐसे तोड़फोड़ किया, तो बाबा ने कहा, बच्चे इसका इंश्योरेंस क्यों नहीं कर दिया, अगर इंश्योर कर देते थे कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से सब वापस आ, इंश्योरेंस इंश्योर कर दो। इसके बाद बाबा ने जितनी भी हमारी एग्जीबिशन थी, पहले हम इंश्योर करा देते थे, ताकि अगर भी कोई कुछ कहे भी ना करे भी तो इंश्योरेंस मिल सकता है। खैर, फिर ये जो अखबार में गलत गलत बातें, पता नहीं सब झूठ फूट, तो ये जब बात पहुंची तो बाबा के पास वो कटिंग गई। तो बाबा ने कहा, देखो उस अखबार का नाम है विश्वामित्र, अब इसके एडिटर को पत्र लिखना चाहिए। तो बाबा ने जगदीश भाई, उस समय बाबा के पास आए थे, तो बाबा ने जगदीश भाई को कहा कि बच्चे इनके एडिटर को पत्र लिखो और इनको लिखो कि आपकी अखबार का नाम तो विश्वामित्र है, लेकिन आप हमारे सबसे बड़े मित्र हो, आप हमारे सबसे बड़े मित्र हो, क्योंकि आपने जो ये जो कुछ बातें लिखी है ये सब गलत है, लेकिन आपने बहुत बड़ी मित्रता हमारे से की है, क्योंकि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। आप परम मित्र हो गए हमारा हमारे, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो जो समझदार लोग होंगे ना, वो कहेंगे जाके देखे तो सही क्या है, ये लिखा है पर जाके देखे तो सही क्या हर जाए देखने में, हम भी देखें, और जब वो देखने आएंगे तो देखेंगे ये तो सच्चाई की बातें, तो पवित्रता की बातें, तो बहुत ऊंची बातें हैं, तो अपने आप आएंगे। ये तो आप उनको लिख दो कि आपने ये हमारे हमारे लिए कोई बुरा प्रचार नहीं किया, लेकिन आपने आप हमारे मित्र बनकर के पब्लिसिटी की मित्र बन करके मुफ्त में कर देना, हमको मेहनत करनी पड़ती, पैसा खर्च करना पड़ता अखबार में डालने का, ये तो मुफ्त में हो गया हमारा काम और लोग आएंगे। तो यदि बाबा कैसे हर चीज को पॉजिटिव लेते थे और उसके हिसाब से बेफिक्र बादशाह बन गए। यज्ञ के अंदर शुरू जैसे भारत में आए, तो सारा जो यज्ञ का जो इनका बाबा का भी धन लगा सब लगा, 14 साल तपस्या की, बहुत अच्छी तरह से बाबा ने अपने बच्चों को रखा, क्योंकि सब अच्छे अच्छे परिवार से आए थे, सब धनी, वो सिंधी लोग बहुत धनी थे, सब छोड़ करके बाबा के पास आ गए। तो बाबा ने उनको कोई ऐसे ही थोड़ी रखा, बहुत अच्छी तरह रखा, 14 साल खूब बाबा ने अच्छी तरह रखा बाबा ने, भले सादगी से, लेकिन खाना पीना की कोई कमी नहीं थी। तो जब भारत में आए तो बेगरी पार्ट हो गया, पैसा ही नहीं। अभी सवेरे है तो रात का खाना नहीं, ये मतलब बहुत सवेरे सवेरे बाबा कहते चलो बच्चे चलो। हाँ उस समय ये माउंट आबू में बहुत सारे ये करौंदे और आम और ये क्या बोलते हैं जामुन, बहुत पेड़ थे बहुत ज्यादा। अभी भी इस समय भी है, परंतु उस समय इतने थे। तो सवेरे सवेरे गए पहाड़ों पर, गए बाबा मम्मा गए, सबको ले गए, करौंदे खाए, जामुन खाए, आम खाए, पेट भर गया। नाश्ता कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है, नाश्ता हो गया तो बचत हो गई है। फिर दिन के 10 बजे बाबा लंच क्या बनाए, भोजन क्या बनाए। बाबा कहते थे बच्ची ये सावन शाह की हुंडी सकारने वाला बैठा है। सावल शाह की उंडी का एक कोई कहानी है कि कैसे वो योगी था और कहाँ खाने को नहीं पर कहाँ से पैसा आ जाता था पता ही नहीं। वो सावल शाह हुंडी भर लेता था, मतलब वैसे बताते कहानियां। तो कहाँ से पत्र आता था, लिफाफा आता था, और जैसे खोलते थे अंदर पैसे पड़े हैं। बाबा कहेंगे जाओ बच्ची आइए अनाज ले आओ, आटा ले आओ, सब्जी लाओ, बस हो गया। फिर शाम को आ गया, फिर सुबह आ गया। अब उस समय जो बेगरी पार्ट में बाबा के बच्चे थे, कईयों को आया कि बाबा कुछ करना चाहिए, ऐसे कैसे हम कहाँ से आएगा। बाबा कहते थे शिव बाबा कभी बच्चों को भूखा नहीं रखेगा, ये उनका यज्ञ है, वो ही हमको पाल रहा है, वो भूखा कैसे रखेगा बच्चों को। और जब तक बच्चों को न मिले बाबा मम्मा भी नहीं खाएंगे। तो मानो अब शिव बाबा कैसे मदद करते थे। तो उस समय कई ऐसे आए, बाबा हम थोड़ा जाके नौकरी करें, हम तो धंधा करें, हाँ फिर बाबा हम कमा करके यज्ञ को देंगे, तो बाबा हमें छुट्टी दो हम जाएं। बाबा कहते थे बिल्कुल बच्चे माया है, जाओगे माया पकड़ लेगी। तो कईयों ने बाबा का भी नहीं माना और गए, तो छटनी हो गई। हाँ जो थोड़ा संशय बुद्धि थे वो चले गए। तो बाबा कहते बच्चे संभालना, माया से संभालना, जाना जाओ, बाबा तो मना नहीं करेंगे, किसको रोक तो सकते नहीं ना। तो गए माया खा गई। परंतु बाबा इतने अचल अडोल इतने थे, आज भी बाबा की मुरली में अचल और अडोल, वो बाबा की स्थिति अंगद की तरह बेफिक्र बादशाह थे। बच्चे कौन हमको खिला रहा है, हम किसको अपना जीवन दिया है। बाबा की कई बार मुरलियों में आता है कि अंत के समय कैसे खाने को नहीं मिलेगा, सब्जी तो मिलेगी नहीं, अतिवृष्टि हो गई सब बह गई सब्जियां, तो सब्जी तो नहीं मिलेगी। बाबा ने मुरली में कहा कम से कम दाल रोटी तो मिलेगी, क्योंकि दाल रोटी माना गेहूं और चावल और दाल, वो तो घर में 6 मास का स्टॉक तो रहता ही है ना, कुछ ना कुछ तो वो तो मिलेगी। बोले सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, ये सब और चीजें न भी मिले तो कौन हमें पाल रहा है, बाबा पाल रहा है। फिर बाबा के अपने बच्चे भी बहुत डिससर्विस करने लगे, कोई जैसे थे, कोई भी कितनी डिससर्विस कई करते हैं। तो बाबा के पास पत्रों में रिपोर्ट जाती थी कि बाबा फलाना माया के वश हो गया। अब वो जो माया के वश हो जाते वो है उनकी अपनी कमजोरी, पर अपनी कमजोरी न बता करके संस्था की बदनामी करेंगे, संस्था ऐसी संस्था है अपनी कमजोरी, खुद नहीं चल सके तो भाई अपनी कमजोरी बता, भाई मैं नहीं चल सका, परंतु अपनी कमजोरी को छिपा करके दूसरे पर दोष। तो खैर, तो बाबा के पास रिपोर्ट आती थी कि बच्चे कैसे नाम बदनाम कर रहे हैं, बच्चे डिससर्विस कर रहे हैं। तो बाबा कहेंगे ड्रामा, ये भी ड्रामा, हम हर मुरली में हम देखते हैं किस रूप से कैसे बच्चे माया के वश हो गए, माया खा गई। फिर बाबा कहेंगे बच्चे ये ड्रामा है, ड्रामा कह करके और आगे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ड्रामा बच्चे ये तो होना ही है। हर एक कोई राजा रानी थोड़ी बनेगा, कोई प्रजा भी बनेंगे, दास दासियां भी बनेंगे। अब ये इतना इतना ऊंचा ज्ञान बुद्धि में जैसे आया तो बेफिक्र बादशाह होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इंसान का कार्य नहीं, पहले निश्चय चाहिए। निश्चय मजबूत है तो ये बातें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। तो बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह बने, इतनी बातें बाबा के सामने आई, अभी तक आती रहती है, ऐसे नहीं कि अभी नहीं है। लेकिन हमारी दादियां देखो, बड़ी दादी के आगे भी कितनी बातें आती थी, लेकिन कैसे दादी जी इतना सहज रूप से उसका हल निकाल देती थी, बाबा की मदद थी बहुत, क्योंकि कार्य उनका है। तो कैसे बने ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह, ये चार निश्चय जरूर चाहिए, चार प्रकार के निश्चय जो बाबा कहते हैं। जब ये चार प्रकार का निश्चय हो, जैसे ब्रह्मा बाबा में थे, तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। कौन से चार बातें? पहले तो खुद में पूरा विश्वास चाहिए, पता नहीं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, हो सकेगा नहीं हो सकेगा, माया को जीत सकूंगी नहीं जीत सकूंगी, ये प्रॉब्लम आएगी, पता नहीं हल होगा नहीं होगा, ये कभी भी सोचे नहीं। कौन है मेरे साथ, वो अलग, वो दूसरा निश्चय, पर कौन हूं मैं। हर मुरली में देखो बाबा कितने हमें वरदान देते हैं, कितने टाइटल देते हैं, वो टाइटल भी याद करो ना तो बेफिक्र बादशाह हो जाओ। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, तुम कौन हो बच्चे? साहिब के बच्चे, साहिबजादे हो, कितना बड़ा टाइटल है ये। भविष्य में तो शहजादे बनेंगे और वर्तमान में साहिबजादे, साहिब के बच्चे, माना भरपूर माला माल, किसी में आंख न डूबे। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहो या आत्मविश्वास कहो या जो बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं उनके ऊपर पूरा निश्चय हो, हम कौन हैं, हम विजयी आत्माएं हैं, भगवान के नूरे रतन हैं, हाँ होवनहार विश्व के मालिक हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं, ये सारे टाइटल्स अगर आप याद करो ना तो बेफिक्र बादशाह बनना बड़ी बात नहीं है। ये सब जो जो बातें सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम तो इनसे बहुत ऊपर हैं। आज जैसे हवाई जहाज देखते, छोटे छोटे ऊपर जैसे चढ़ता है तो बाकी सब छोटा छोटा होता जाता है, मकान देखो पहाड़ देखो सब छोटा 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 होता जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ गया, ऊंचा चढ़ गया। तो जितना हम अपने स्वमान में स्थित रहेंगे ना, उतना हम बेफिक्र बादशाह बहुत सहज बन सकेंगे। हम कौन हैं, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, बहुत इतने सारे उत्तर मिल सकते हैं और उसका नशा चढ़ सकता है। तो पहले निश्चय चाहिए, वो उस निश्चय के आधार पर वो नशा जब चढ़े ना, तब बेफिक्र बादशाह बनो। लोग दुनिया में नशा पीते हैं, उनसे पूछो क्यों नशा पीते हो, क्यों शराब पीते हो, क्या मिलेगा? तो बस गमों को भूलने के लिए, दुखों को भूलने के लिए, क्योंकि कोई दुख आया कोई कष्ट आया बहुत चिंता है, तो शराब पी लिया तो कम से कम थोड़ी देर के लिए वो जो दुख दर्द है ना वो भूल जाता है, क्योंकि नशे में चूर होते हैं, अपने को राजा समझते हैं। ये शराबी कोई रास्ते पर जाता है जाएगा, वो क्या करे, मैं तो राजा हूँ, सड़क पर घूमता रहेगा राजा समझ करके, वो नशा नहीं है हमारा। परंतु एक पॉजिटिव गुण उन शराबियों से भी हम ले सकते, क्या? वो कैसे घूमते? बेफिक्र बादशाह है ना, होते है ना, भले वो अल्प का, जब तक वो शराब का नशा है, वो शराब का नशा टूटा, वो ये गंदे नाले में पड़ा उसको पता ही नहीं, पर जब तक वो नशा है तब तक तो वो चाहे गंदे नाले में ही पड़ा है वो तो अपने आप को राजा समझ रहा है। इसलिए शराब पीते हैं गमों को भूलने के लिए, या फिर अपने इंद्रियों को संयम में रखने के लिए भी नशा पीते हैं, ये भांग वांग जो नहीं पीते हैं अपने इंद्रियों को संयम में रखने के लिए, नहीं तो काम वासना के वश हो जाते हैं, तो इसलिए संयम में रखने के लिए ये सब नशा पीते हैं। परंतु बाबा कहते हैं सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के। कौन सा? पहले तो आत्मा का स्वमान, फिर बाबा का। बाबा का बाद में आएगा, लेकिन पहले आत्मा का स्वमान, मैं कौन। और आत्मा का जो ज्ञान है उससे तो इतना स्वमान आता है जो कोई भी प्रकार की चिंता करने की बात ही नहीं है। सबसे बड़ा डर अगर किसी इंसान को है वो है मृत्यु का डर। बाबा दुखों की लिस्ट कहते हैं ना, तो दुखों की लिस्ट के साथ साथ डरों की लिस्ट, कितने प्रकार के डर, कॉकरोच से भी डरेंगे, फलाने से भी डरेंगे, हाय कॉकरोच कॉकरोच आ गया, चूहा आ गया, फलाना आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, शेर आ गया, डरते ही रहते हैं। कितने अंधेरे से डर, गाड़ी आई डर डर डर, और सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। इन सबसे डर क्योंकि मृत्यु का डर है, हाय मर न जाऊं। कोई लोग तो उनकी भाषा ही ऐसी होती है, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय हाय मर गया, मर न जाऊं, हाय मर गया। बाबा कहते ये भाषा कभी नहीं बोलो, पहले तो कितना बड़ा ज्ञान है ये, मैं तो कभी नहीं मरता हूं। आत्मा मरती है क्या? खाली हम बोल नहीं, हमको विश्वास है, अनुभव है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, मैं तो कभी नहीं मरती हूँ, पहले भी थी अभी भी हूँ फिर भी रहेंगे, मैं तो सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुख से कभी मैं मर गया ये शब्द नहीं निकलना चाहिए, कभी भी नहीं। बाबा कहते सतयुग के देवताएं अमर है, अमर किस आधार पर है? क्योंकि एक तो मृत्यु का डर नहीं है, मैं मरता हूँ ये डर नहीं है, मैं तो आत्मा एक खाल उतार के नया खाल लूंगा, जैसे सांप का मिसाल बाबा देते हैं। तो सब अमर, अमरत्व का अनुभव है सबको, इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। और शरीर छोड़ने का टाइम है तो स्वइच्छा से, योगी वो जिस जो स्वइच्छा से शरीर छोड़े, मैं आत्मा अभी निकल रही हूँ। हाँ, जब तक आत्मा शरीर में है चाहे भी निकलो नहीं निकलेगी, जब तक हिसाब किताब पूरा ना हो। तो और वैसे ही कोई अटैचमेंट मोह न व्यक्ति न वस्तु में, और शरीर है लेकिन ये ढीला कर दिया वस्त्र, देही अभिमानी बाबा कहते बनो। तो देही अभिमानी क्या है? तो जैसे मरना ही है ना, रोज रात को मर ही जाते ना, देह से न्यारे हो जाते, नींद जब आती है गहरी तो उस समय शरीर याद है कुछ भी नहीं। तो रोज तो वैसे ही रात को मरते हैं नींद। और यहाँ बाबा योग में हमें कहते हैं शरीरी बन जाओ, देही अभिमानी बन जाओ, देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, नंगे आए थे नंगे जाना है, ये वस्त्र को ढीला करते जाओ। तो आत्मा जब शरीर छोड़े तो जैसे मक्खन से बाल, इतना सहज। किसकी बहुत सहज मृत्यु होती है, कहते कितना भाग्यशाली, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, पता भी नहीं चला होगा आत्मा उड़ गई। कहते वो सबसे अच्छा मौत है, बाबा ने एक बार कहा था सबसे अच्छी मौत है रात को नींद सो जाओ सवेरे उठो ही। हमारी संतरी दादी ऐसे थी, संतरी दादी ना कलकत्ता की संतरी दादी, रोज बहुत ध्यानी, बहुत ध्यान में जाती थी, बहुत साक्षात्कार कर, जब एक सेकंड में गई, ब्रह्मा बाबा के साथ में रहती थी मधुबन में, फिर बाबा ने उसको, फिर दादी ने उसको कलकत्ता भेजा, तो बाबा के साथ ही रहती थी। तो दादी जी, दादी संतरी दादी को बाबा कहते थे जब कोई संदेश बाबा से लेना था ना वतन से, तो वो वतन में देखती थी अव्यक्त बाप दादा को, तो जाओ बच्ची बाबा के पास जाओ और ये बाबा से पूछो या ये संदेश लेकर के आओ। तो बच्ची गोसून कम सुन, ये गोसून कम सुन ये शब्द तब निकला है ब्रह्मा बाबा ने का। तो बाबा उनको दृष्टि देते थे, दृष्टि दी बस दो सेकंड, जैसे इनको दृष्टि दी गई आंखें बंद एकदम उड़ी वतन में। तो बाबा उनको कहते थे बच्ची गो सुन कम सुन, वहां बैठ नहीं जाना, वतन में खेल पाल नहीं करना, क्योंकि खेल पाल भी बहुत करते जाते तो आधा आधा घंटा ध्यान में हो जाते हैं, पता ही नहीं। और यहाँ वो कई बार तक तो बहुत रास करते थे, हाथ हिलाते थे, ऐसे ऐसे ध्यान में बहुत कुछ बाबा दिखाते थे, लेकिन कुछ संदेश लेना है तो रास करने थोड़ी बैठेंगे। तो बाबा के उनको कहते थे, बच्ची गो सुन कम सुन, बस दृष्टि दी गई ध्यान में और देखो तो आधा मिनट भी नहीं आ गई संदेश लेकर के। तो वो दादी थी एकदम, और तो उसमें भी अशरीरी तो हो ही जाते हैं, क्योंकि आत्मा बिल्कुल न्यारी बन जाती है और सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती, सूक्ष्म शरीर उनको होता है। तो ध्यान में जाने वाले ऐसे अनुभव करते हैं, लेकिन फिर उनके संस्कार थोड़े मौज करने के, तो फिर वो समझते कि वतन में आए मौज करे। फिर बाबा उन कई बार साकार में जब संदेशी जाती थी ध्यान में, तो वो तो वतन में होती थी और बाबा की मुरली चलती थी। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते देखो बच्ची अभी ये मुरली तो नहीं सुन सकती है, ये तो ध्यान में मौज कर रही है। तो बच्चे ये बच्ची तो खाली मौज कर रही है तो टाइम वेस्ट कर रही है, खाली घूम खाली मौज खाली रास कर रही है। और तुम बच्चे देखो बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आप कमाई कर रहे हो, ये कमाई नहीं कर रही है। इसलिए बाबा ध्यान को इतना महत्व नहीं देते थे, ये तो खेल पाल है, इसमें माया भी प्रवेश कर जाती, पर ज्ञान है तो समझ है क्या करना है क्या नहीं करना है। परंतु अशरीरी हो जाते थे, अशरीरी एकदम। और योग में भी अशरीरी हो सकते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, तो ये देह रूपी वस्त्र ढीला करते जाओ, इससे क्या होगा, जब अंतिम घड़ी आएगी तो आत्मा एक सेकंड अभ्यास है ना देह से न्यारे होने का, तो अंत के समय भी बहुत सहज आत्मा उड़ सकती है शरीर से। और जिनका शरीर से बहुत अटैचमेंट है, बहुत मोह है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वैभवों से, इच्छाओं से, इच्छाएं बहुत है, आसक्ति बहुत है, उनको बहुत कष्ट होता है शरीर छोड़ने में भी, क्योंकि इतना जल्दी आत्मा जाएगी नहीं। जैसे टाइट वस्त्र पहना हो ना, टाइट वस्त्र, और उसको निकालना है तो ऐसे थोड़ी सहज निकलेगा। पहले जमाने में वो चूड़ीदार इतना टाइट पहनते थे, वो एक 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 एक, एक, एक निकालना होता था, फट भी जाता था। तो इसलिए वस्त्र ढीला हो तो बड़ा सहज, तो शरीर क्या है, वस्त्र है। तो बाबा कहते ढीला करो तो मक्खन से बाल, तो अशरीरी बन जाओ, देही अभिमानी बन जाओ, हम मरे पड़े हैं ये महसूस करो, तो आत्मा देह से न्यारी हो जाए। तो वैसे ही अभ्यास हो जाता है तो मरने का तो डर ही नहीं है। हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, मम्मा कहती थी। मम्मा को जब पता चला कि उनको कैंसर है, पता चला, डॉक्टर ने पहले रमेश भाई को बताया कि कैंसर है, क्योंकि पता चला वो करते हैं। अब कैंसर तो ऐसा रोग है जिसका उस समय तो कोई इलाज ही नहीं था। तो रमेश भाई ने बाबा को कहा कि बाबा मम्मा को ये बीमारी है, मम्मा को बताएं, क्योंकि कैसे बताएं उनको। बाबा ने कहा बताओ, मम्मा तो निर्भय है, बताओ उनको, जरूर बताओ। तो जब मम्मा को बताया, मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, इतना सहज ले लिया मम्मा ने, कैंसर है तो क्या, कोई बात नहीं। यानी आप सोचो किसको कहो तो क्या सोचे, पर मम्मा तो देही अभिमानी वैसे ही थी, अशरीरी स्थिति उनकी वैसे ही थी, तो बड़ा सहज रूप से ले लिया। और सचमुच उसके बाद हम बिल्कुल, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन मम्मा के चेहरे पर कभी नहीं दिखा, अंत तक मम्मा ने सेवा की, लास्ट घड़ी तक सेवा की, अंगूर बांटे सबको, बहुत ही खुशी खुशी मुस्कुराते मुस्कुराते, और वो पूरा किया, आत्मा उड़ गई। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अंत तक सेवा की, अंत तक, अंतिम घड़ी तक, वो लास्ट वे भी रात को मुरली चला करके बच्चों को कहा, अच्छा अच्छा विदाई कहो या छुट्टी कहो, तीन शब्द बाबा ने कहे, बच्चे सदा निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहना, और अच्छा छुट्टी, और बाबा कमरे में आए और एक सेकंड का खेल था न्यारे। तो यही हमको बाबा सिखाते हैं कि बेफिक्र बादशाह में ये न्यारी स्थिति बनानी होती है, और उसमें आत्मा का ज्ञान पक्का है, इसलिए डर की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे सबसे बड़े से बड़ा जो बड़ी से बड़ी बात आएगी वो कोई की मृत्यु होगी ना, उससे भी डर नहीं है तो बाकी फिक्र किसका। इनसे कोई और बात बड़ी आ सकती है क्या? किसी को बीमारी हो, मतलब कुछ भी हो, बहुत बड़ा रोग है, अच्छा अंत्य तो उसकी मृत्यु से ही होगी ना भाई, मृत्यु ही खत्म। परंतु मृत्यु का ही डर नहीं है तो किसका फिक्र। पर उसके लिए आत्मा का पूरा निश्चय चाहिए, और जो बाबा ने हमें इतने स्वमान दिए हैं, वो स्वमान आए तो चाहे कितने भी विघ्न आए, वो विघ्न कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं कि बाबा में विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ये जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। कौन है, मैंने किसको अपना जीवन दिया है, कौन है मेरा, किसके आगे मैं समर्पित हुआ हूं। मन से तो है ही ना, बाबा ही थोड़ी कहते सब यहाँ के रहेंगे, भले घर में रहो पर अंदर में सोचो मैं ट्रस्टी हूं, ये सब बाबा का है। तो किसको मैंने अपना हाथ दिया है, किसको अपना सच्चा साथी माना है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी है। कौन पढ़ा रहा है हमें, कौन अपने साथ ले जाएगा। तो बाप टीचर सदगुरु सारे संबंधों में इतना निश्चय हो जो कोई उस निश्चय को हिला न सके। बाबा यहां तक कहते हैं कि बच्चे तुम बाप के मैसेंजर हो, पैगंबर हो, तुम बाप का पैगाम दो बेधड़क होकर के, फिर भगवान को वाच्य कह दो। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, भगवान कह रहा है, डरो मत। जिनको सत्युग में आना होगा वो आएंगे, जरूर आएंगे, वो तो ढूंढ रहे हैं। कई कहते हैं हम पवित्रता की बात कैसे कई लोगों को, कई ऐसे भी हैं जो पवित्रता की बात उनको नहीं कही तो उनको फील होता है हमको पहले क्यों नहीं बताया, कई ऐसे भी हैं। इसलिए जो जैसी बात है मना थोड़ी है, परंतु ढंग होता है बताने का ताकि उनको बुरा भी न लगे। लेकिन बाबा में इतना निश्चय हो तो इस निश्चय के आधार पर कितनी भी बातें आई, बाबा कहते हैं मुझे दे दो, प्रॉब्लम कुछ है मुझे दे दो, आप क्यों सोचते हो, यूज करो मुझे। बाबा को कहो बाबा अभी ये आपका ही, आपको ही हल करना है, आप बेफिक्र हो जाओ, वो सर्वशक्तिवान है। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई चीज पकड़ाया वो थक गया पकड़ने, मम्मी लो तो क्या करेगा, मम्मी लो। अब मम्मी के कई बार होता है बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, बोल रहा है, मम्मी को बहुत सारा काम है, अब वो बच्चे को कहाँ संभालेगी, तो कहेगी पति को, कहेगी आप संभालो अब वो पति को दिया, बाप को दिया, बाप तो फ्री बैठा है, खेलेगा बहुत मजा करेगा, बच्चा तो खुश, माँ भूल गई क्योंकि जिम्मेदारी दे दी ना, जिम्मेदारी नहीं, नहीं मुझे ही संभालना है, मुझे ही संभालना है, तो बोझ उठाओ दे दो। कई कहते पर बाबा को हम इतना सारा बोझ कैसे दे, बाबा को तो दुनिया का बोझ उठाना है, मेरा क्यों, मेरा बोझ भी उठाएगा क्या, मैं अपने आप बोझ उठाऊंगा। तो बाबा कहते उठाओ मैं उठाने लिए तैयार हूं। और बच्चे कहते हैं कि बाबा सब आपको कैसे बोझ दे, इतना दुनिया का बोझ है, मेरा क्या बोझ है, मेरा भी क्यों लो मैं करूं। तो कहेगा करो, बाबा कहता है दो। कई बार हम इसका मिसाल देते हैं कि हम ट्रेन से उतर रहे हैं और सामान तो बहुत है, एक कुली आता है, तो कुली कहता है कि आप दो हम ले जाएंगे, तो हम कहते अच्छा ले जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, इतना है हाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएगा, ले जाएंगे आप चिंता नहीं करो, आप बस खाली हाँ बोलो। तो एक पेटी उठाई उसके ऊपर दूसरी पेटी उसके ऊपर तीसरी पेटी, फिर कह इधर दो उधर दो, अरे भाई इतना कैसे लोगे तुम, आप दो दो यहाँ रखेगा वहां रखेगा रखेगा, और वो दौड़ता दौड़ता जाएगा, और हम तो हाँ करते जाएंगे हाथ में कुछ भी नहीं तो भी और वो तो भाग रहा सामान लेकर के उनके पीछे पीछे, और वो कहते दो और हम कहते इतना कैसे लेगा पर वो शक्ति ताकत वाला है ना, रोज का काम है उसका, हमारे लिए तो रोज का काम नहीं है ना। तो जो सारी दुनिया का बोझ उठा सकता आपका नहीं उठाएगा है? कि नहीं भगवान के ऊपर तो बहुत बोझ पहले से ही है मैं क्यों दूं जैसे एक वो चुटकुला सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा था तो पेटी सिर पर रख करके ट्रेन में चढ़ा, तो जब ट्रेन में बैठा सीट पर तो पेटी सिर पर ही थी, तो लोगों ने कहा अरे सिर पर क्यों रखा, नीचे रखो ना, पेटी को सिर पर रख के थोड़ी बैठना होता है। कहते वो ट्रेन की टिकट तो खाली मैंने अपने लिए ली ना इस पेटी के लिए थोड़ी ली है, पेटी के लिए अलग टिकट होगी क्या। चलो ज्यादा आपको 30 किलो तो अलाउड है, इतना किलो अलाउड है, चेक इन लगेज भी हो जाता है दे दो, प्लेन में आते चेक इन हो गया, इतना अलाउड है आपके साथ साथ ही चलेगा प्लेन में, पर दे दो थोड़ा भूल जाओ कोई बात नहीं, जब जब पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर अपने मंजिल पर मिल जाएगा आपको, अभी तो छोड़ो ना, छोड़ो तो छूटो आपका बोझ हल्का हो जाएगा, हल्का करने लिए वो तैयार है। हम कहें नहीं 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 बाबा हम पकड़ के रखेंगे, तो पकड़ो फिर चिल्लाएंगे बाबा हमें छुड़ाओ बाबा हमें छुड़ाओ, तो बाबा कहते छोड़ो तो छूटो, पकड़ के खुद रखा है मेरा 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 करके, और फिर चिल्लाते हैं ना, वो जैसे पक्षी का मिसाल देते हैं ना, वो पक्षी डाली को पकड़ के रखा है और देख रहा है दूसरे उड़ रहे हैं, दूसरे उड़ रहे, अरे तो कितने स्वतंत्र होकर उड़ रहे हैं, और मैं तो यहीं पड़ा हूं, मुझे भी कोई उड़ाओ मुझे भी कोई उड़ाओ, अरे मुझे उड़ाओ ये क्यों बोलते हो, छोड़ो तो छूटो, वो जो पकड़ के रखा है पंजे पंख तो है, फड़फड़ा भी रहा है पकड़ के भी रखा है, तो आत्मा भी तो पंछी है ना, एक सेकेंड में उड़ गई। कितनी बातें होती पर जब अंतिम घड़ी आती आत्मा देखती है क्या ये ना, एक सेकंड में उड़ गई, कितनी देर लगती है। कोई पक्षी है सामने, वो चीता भी आ जाएगा कोई भी आ जाएगा उड़ जाएगा पक्षी, वो चीता थोड़ी उड़ेगा, तो आत्मा क्या हूं मैं, पंछी। तो न्यारे हो जाओ, पंछी की तरह न्यारे हो जाओ, उड़ जाओ। या बाबा कई बार मिसाल कछुए का देते हैं, कछुए का मिसाल है कि अंग अंदर ले लेता है, जब देखता है कोई विघ्न है तो क्या करता है, अपने हाथ पैर सिर अंदर ले लेता है, तो वो अंदर ले लिया सुरक्षित हो गया, वो उनके ऊपर जो शेल है वो कवच वो उसको सुरक्षित रख देता है। तो बाबा योग का कवच बताते हैं, योग हमारा कवच है, इस कवच को जैसे पहन लिया, ढाल है या कवच कहो या जो को कहो, जब कवच पहन के जाते थे योद्धे लोग तो तलवार कोई नहीं लगती, ढाल हाथ में तो नहीं लगेगा, अपनी रक्षा है, इसलिए बाबा कहते कोई भी बात आ जाए बाबा हाँ कहो, देखो बाबा कैसे आपको पकड़ लेगा, बस इसलिए इतना निश्चय बाबा में हो जो कोई आपको हिला न सके। इस पर कई चुटकुले आते हैं कैसे निश्चय रखो, एक रामायण का चुटकुला हमने कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि राम ने अंगद को भेजा रावण के पास उनको बताने के लिए कि मैं उनका दूत हूं, मैं ही इतना शक्तिशाली हूं, तो राम कितना शक्तिशाली होगा, तुम हट अपना छोड़ दो। तो रावण के पास गया अंगद, तो कहा इन्हें अपना अपनी शक्ति दिखाई, तुम क्या शक्ति है तुम्हारे में, कहा अच्छा दिखाओ, तो उसने क्या किया अपना पैर जमा लिया और कहा रावण तुम इस पैर को हिलाओ, हिला के तो देखो। चुटकुला है, बाकी तो कहानी तो है ये रामायण की। तो रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन उसको नहीं हिला सका, और सचमुच मतलब रावण हार गया तो उसका चुटकुला क्या बना दिया कि जब वो अंगद वापस अपने वो सेना में पहुंचा तो जो दूसरे सैनिक थे उसने उन्होंने अंगद को कहा, अरे अंगद तुमने ये जो जो किया वो अच्छा तो किया, लेकिन क्या अगर रावण की शक्ति इतनी थी है, अगर वो आपके पैर को हिला देता तो ये चुटकुला बना दिया है, अगर आपके पैर को हिला देता तो कहते वो मुझे क्या करना है, सीता तो उसकी राम की उसको चिंता है ना, समझ गए भाई सीता को वापस करो, अगर नहीं करोगे तो युद्ध होगा, देखो राम इतना शक्तिशाली है, मैं उसका केवल दूत हूँ, मैं इतना ये दूत ही केवल शक्तिशाली इतना हूँ तो वो कितना शक्तिशाली होगा, इसलिए तो मुझे देख करके आप उसकी शक्ति को पहचानो, आप हिला के तो देखो मेरा पैर। तो वो चुटकुला बना दिया है कि उसकी सेना के लोगों जो उनके और थे सेना वाले कि अगर तुमने ये काम तो बहुत बहादुरी का किया, रावण को के आगे चैलेंज रखा कि मेरा पैर हिला के तो देखो, पर सचमुच वो हिला देता होता तो कहते मुझे क्या परवाह, मैंने अपने लिए थोड़ी किया, किसके लिए किया, मैं गया भी तो उनका दूत बनकर के, तो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी थी, किसकी जिम्मेदारी थी, राम की, वो जाने सीता तो उसकी है ना, मेरी तो यानी एक चुटकुला बना दिया, यानी कहने का भाव है कि जिम्मेदारी उनको दे दो, आप बेफिक्र हो जाओ, शक्ति आपको मिलेगी, पर अपने आप को जिम्मेदार समझेंगे तो करो अपनी शक्ति आजमाओ, वो तो राम की शक्ति थी उसके अंदर, इसीलिए हिला ना सका, उसकी अपनी शक्ति हो या ना हो अलग बात है, पर उसको किसकी शक्ति थी, दूध किसका था, तो जिम्मेदार कौन था, जिसने संदेश भेजा, जो संदेश वाहक होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है, वो तो अपना काम करेगा, भाई जिसने संदेश दिया वो संदेश बताना है, पर सारी जिम्मेदारी तो जिसने दी है उसकी होती है। तो हम किसके बच्चे हैं, हमारा जिम्मेदार कौन, स्वयं भगवान, तो फिकर की बात है क्या, किस फिकर, कौन सा फिकर करेंगे, हाँ मेहनत करो, अपना कर्तव्य पालन करो, वो सब करो, पर हाई क्या होगा, हाई क्या होगा, चिंता बैठ के करो, बाबा बैठा है, जो होगा अच्छा होगा, फिर आता है ड्रामा, ये तीसरा निश्चय, जो होगा अच्छा ही होगा, सब कुछ कल्याणकारी है इस ड्रामा के अंदर। बाबा ने उस दिन भी मुरली में बताया कि कैसे हर चीज से पॉजिटिव लो, हर चीज से, हर चीज के अंदर से पॉजिटिव लेंगे ना तो बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे। ये विनाश भी बहुत कल्याणकारी है, दुनिया को इसलिए चिंता है ये विनाश हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बाबा कहते और ही अच्छा होगा, इससे और ही कल्याण होगा, और ही अच्छा, इससे नई दुनिया आएगी, कल्याणकारी है। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, एक भाई आया अपना अनुभव सुना रहा था, बड़ा बिजनेसमैन है वो, तो अपना अनुभव सुना रहा था कि जैसे जब मैं ज्ञान में आया ना, मेरे बच्चे भी थे सब, परंतु बच्चे छोटे छोटे थे, तो क्या हुआ, बोला यंग थे, कोई छोटे भी नहीं थे, यंग थे, 20 साल 22 साल, तो क्या हुआ, बिजनेस तो बहुत अच्छी थी और बच्चे थोड़ा, क्योंकि बाप का पैसा होता है तो थोड़ा उड़ा रहे थे, धंधा तो बहुत अच्छा था, पर जैसे मैं ज्ञान में आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा मना लॉस होता गया, बिजनेस में लॉस होता गया, तो लोगों ने कहा देखा तुम ब्रह्मा कुमारियों में जाते हो ना, इसलिए तुम्हारा ये नुकसान हुआ है, ब्रह्मा कुमारियों में जाती हो, तुमने ये छोड़ा इसलिए ये सब हो रहा है। तो उसने कहा उसके कारण क्या होगा, ये तो धंधे में होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो लॉस हो गया, दिवाला भी मार दिया। इनके जो बच्चे थे वो मैंने वो गलत लाइन में जा रहे थे, बुरे संगत में जा रहे थे, और ये बिजनेस में जो लॉस हुआ तो नेचुरली पैसा तो रुक गया ना, तो लॉस हुआ तो इसलिए उनकी आंखें खुल गई और वो बच गए, गलत रास्ते में जाने के लिए, जाने से बच गए, और बच गए, और और इसको तो बाबा का ज्ञान था, ड्रामा का ज्ञान था, कर्मों का ज्ञान था, तो इसके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। कहा बस ड्रामा में यही था, इसमें कोई कल्याण होगा, कोई कल्याण होगा, कोई कल्याण होगा। इसके घर वाले भी बहुत इसका विरोध करे, पर ये कि नहीं, बाबा बाबा कल्याणकारी है, मेरा नुकसान नहीं हो सकता। धन गया तो क्या बड़ी बात है, फिर आ जाएगा धन। तो लोग कहीं कल्याण क्या होगा, कल्याण क्या होगा, कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कल्याण क्या था, क्योंकि जो बच्चे उनके खराब हो रहे थे, बुरे संग में जा रहे थे, वो जो दिवाला का टाइम था उस समय बच्चे होश में आ गए और संभल गए, और बच्चों ने बाप को साथ दिया और बिजनेस को फिर से आगे बढ़ाया, और ये पहले से ज्यादा अच्छा हो गया बिजनेस, और बच्चे भी संभल गए और बिजनेस भी अच्छा हो गया। तो देवाला मारा ये अकल्याणकारी थोड़ी था, क्या था, कल्याणकारी था। अगर नहीं देवाला मारता तो बच्चे तो बुरे रास्ते पर जा ही रहे थे, पर संभल गए। अगर अगर उतना ही वैसे ही धंधा चलता तो बच्चे बुरे रास्ते पर जाते, और उसके बाद बाप का सारा पैसा बच्चे खत्म कर देते थे, क्या कमाया। पर वो जो देवाला मारा उसमें कल्याण क्या था, जो बच्चे सुधर गए, बच्चों को होश आया कि ये कभी भी जा सकता है। तो इसलिए हर बात में कल्याण है। ये ड्रामा का ज्ञान हमें दो बातों की शक्ति देता है, एक तो कल्याणकारी है, हर चीज कल्याणकारी है, तो चिंता की क्या बात है, इसमें कोई कल्याण समाया, कोई राज समाया हुआ है जो हम इस समय नहीं जानते, इसलिए लगता है पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे कोई फिल्म देखने जाते हैं, हमें ये कहानी का मालूम है कि अंत इसका बहुत अच्छा है, तो भले अच्छा है ये पता है, तो बीच बीच में कई ऐसे सस्पेंस के दृश्य आते ही आते, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन मालूम है अंत अच्छा है, तो क्या होगा कहेंगे क्या, क्या होगा कहेंगे क्या, नहीं पता है। तो एक तो जो होगा कल्याणकारी ही होगा, उसमें फायदा ही होगा, और दूसरा जो होगा वो नथिंग न्यू, इसीलिए चिंता की बात ही नहीं। रामायण देखने जाते हैं, रामायण में आएगा भाई, हाँ अभी रावण आएगा, अभी सीता को ले जाएगा, परंतु फिर वो विजयी बनेगा, राम रावण का हनन होगा, रावण जाएगा, सीता वापस आएगी। तो बीच में इतनी बातें हुई, पर कहानी का पता है ना कि सीता वापस मिलने वाली है, तो युद्ध भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, तो कैसे देखते हैं वो, कैसे देखेंगे उसको साक्षी दृष्टा हो, क्योंकि पता है अंत में विजय इसकी होनी है। तो बाबा ने भी हमें ड्रामा का ज्ञान के साथ साथ ये भी हमें भविष्य का बताया, बच्चे विजयी तो तुम हो नहीं हो, विजय तुम्हारा जन्म से अधिकार है, इसलिए बच्चे घबराओ मत। गीता, हम गीता का ज्ञान भी यही है, अर्जुन मोह के वश है, नहीं वो युद्ध करना चाहता है, भगवान उसको पहले आत्मा का ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देकर उनको समझाता है कि कोई मरता नहीं है, आप युद्ध करने से घबराओ मत, आत्मा का ज्ञान इतना ऊंचा है, मृत्यु से डरना नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं। परंतु जब देखता है कि अर्जुन इस बात को नहीं समझता, फिर भी कहता है नहीं मैं मारूं, नहीं मारना है, तो भगवान फिर दूसरी बात उनको कहता है, उनको अपना स्वमान याद दिलाता है, तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम विजयी हो, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्षत्रिय कभी हार खा के नहीं आते, मतलब जो क्षत्रिय की क्वालिफिकेशंस है, धर पड़िए धर न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, आप ये अपने प्रण को आप त्याग नहीं सकते हो, जो आपने अब संकल्प किया वो आपको पूरा करना ही है, मुकर मत जाओ नहीं तो कायर कहलाओगे। तो उसको स्वमान याद दिलाया, तुम कौन हो इसलिए लड़ो। पर जब देखा कि अर्जुन फिर भी नहीं, मोह के वश है, कैसे करूं कैसे करूं। तो फिर भगवान ने तीसरी युक्ति अपनाई, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, देखो सब मुर्दा घाट दिखा दिया, सब सारा वो युद्ध स्थल दिखाया, सब मर गए हैं। तो उसको और भी दुख हुआ, हाय मेरे कारण ये सब मरेंगे। इसलिए ऐसा काम मैं क्यों करूं, सब मरने वाले अपने आप ही मरे ना, मैं क्यों मारूं, मृत्यु इनकी निश्चित है जानो अर्जुन, इसलिए तुम केवल निमित्त बनो। भगवान खुद भी कर सकता था, पर अर्जुन को ही निमित्त क्यों बना, क्योंकि फल अर्जुन को ही लेना है ना, भगवान थोड़ी फल लेगा। फिर उनको चौथा कहा कि अर्जुन तुम अगर तुम विजयी निश्चित हो, पर अगर तुम चलो विजय तुम्हारा जन्म से अधिकार है, तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे अगर ये करोगे, चलो नहीं भी अधिकारी बने स्वर्ग में आओगे, इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र ये करो बस। तो भी कहता है कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे, किम कर्तव्य विमुख का वो शब्द बोलते, क्या करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। फिर जब अंत में उसको विराट रूप का साक्षात्कार कराया, कैसे ये सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, ये तुमको कौन कह रहा है, परमात्मा ने अपना साक्षात्कार कराया, तो बस करो भगवान अब मैं समझ गया, ये कौन मुझे कह रहा है, कौन कह रहा है। वो तो अपने मित्र को देख रहा था, ये दोस्त है मेरा, मित्र है कृष्ण, पर भगवान तुमको कह रहा है, पहचानो। तो अगर ये निश्चय भगवान मुझे कह रहा है तो किस बात का डर, करो जो भगवान कहता है, आप चिंता नहीं करो, उसमें कल्याण है। भगवान की श्रीमत पर चलो, भगवान की श्रीमत पर चलोगे तो कल्याण ही होगा। बस ये बाप में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय, कल्याणकारी ही है सब कुछ, किसको हाथ दिया है बस। और चौथा निश्चय है परिवार में, परिवार में भी निश्चय रखो, ये सारा परिवार ईश्वरीय परिवार सारा कल्प मेरे साथ चलना है। सत्युग त्रेता में तो साथ में ही रहेंगे, ये परिवार वो परिवार नहीं चलेगा, ये परिवार साथ चलेगा। फिर चाहे कोई कैसा भी है, पर ये निश्चय कि यही परिवार सत्युग में चलना है। ये क्यों ऐसे करता, ये क्यों ऐसे करता, प्रश्न मत करो, साक्षी दृष्टा हो के हरे का पाठ देखो, क्योंकि सब तो राजा रानी बनेंगे नहीं। तो जब इस प्रकार का हमारा दृढ़ निश्चय है स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में, तो हम क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह। तो बस यहां से ऐसे बेफिक्र बादशाह बन के जाओ जो कोई आपको हिला न सके, अंगद के समान ऐसे पक्के अचल अडोल, स्थिर स्थिति ऐसी रहे जो आत्मा जरा भी नहीं हिले, कैसा भी कैसी भी समस्या आए। बाबा कहते माया क्या है, ये कागज का शेर है, माया क्या है, चींटी है, तो मरी हुई है, भले तूफान आए पर वो तूफान तोहफा बन जाए, हमें आगे बढ़ाए। तो ऐसा बेफिक्र बादशाह बन के जाना है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बत्ती के शुभारंभ में भी आदरणीय शिलू दीदी ने हमें बत्ती का लक्ष्य उद्देश्य ये विषय पर हमें क्लास कराया था। आज बत्ती का लास्ट क्लास है, वो भी आपने ही करके संपन्न किया, क्योंकि पांडव भवन में यहाँ के परमानेंट रहने वाले, ऐसे तो सब जगह सेवा में जाते लेकिन ज्यादातर यहाँ ही आप रहते हो, और आपने प्रारंभ में और समाप्ति में दोनों आपसे ही हुआ। रात्रि को शाम को है योग क्लास नहीं है, इसलिए ये लास्ट क्लास था, है योग है, इसलिए बेफिकर बादशाह सबको बना दिया ना, बाबा की बातें सुनाते हुए कि बाबा कैसे बेफिक्र रहा बड़ी बड़ी बातों में भी, ये सब बातों को सुनाकर अभी हम सबके आने, हम सबके सामने आने वाली बातें तो बाबा से छोटी होगी, इसलिए बाबा को हमेशा ये बातों को याद करके हम हर बात में हर परिस्थिति में बेफिक्र रहेंगे संकल्प करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हाथ की ताली से हम सब धन्यवाद अर्पित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।